حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. چونکہ آج مجلس کے فوراً بعد علم حضرت عباس کی شبیہ برآمد ہوگی، اس لیے مجلس کے آخر میں، مجلس کے بعد دعا کا موقع نہیں ملے گا، اور تذکرہ ایک ایسی ذات کا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین، جو خود بھی مشکل کشا ہے، جو خود بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، جو باب الحوائج ہے. تو یہ بھی دل نہیں مانتا کہ آج کی رات بغیر دعا کے گزار دی جائے. تو آغاز مجلس میں ہم حضرت عباس اور باب الحوائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج ابی الفضل عباس علمدار کربلا کا، صاحبان ایمان کو خصوصاً جو لوگ مجلس میں اختتام تک آ جائیں گے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہراپت و پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان جو محبت اہل بیت اور محبت عباس علمدار کے نتیجے میں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ، جو مجلس میں موجود مومنین اور مومنات ہیں، اور اس سے میری مراد پوری دعا میں یہی ہے کہ آخر تک جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو باب الحوائج کے وسیلے سے پورا فرما، خاص طور پر ہمارے بیماروں، اور بیماروں میں بھی برادر محترم آصف فقیر محمد، ان سب کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، صاحبان ایمان کو اولاد کے ہر غم و صدمے سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت پڑے تو ام البنین کی طرح، ام لیلہ کی طرح، ام فروہ کی طرح، رباب کی طرح، اپنی اولاد تیرے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. خداوندہ، ویسے تو سارا سال ہمیں یاد رہتا، لیکن جیسے جیسے غم کی یہ راتیں آگے بڑھتی ہیں، کربلا کے یہ ظالم ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی اصغر کو شہید کرنے والا، کبھی اکبر کو شہید کرنے والا، ہماری یہ دعا اور بڑھ جاتی ہے کہ خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور قبولیت دعا کے لیے اب آخر میں آپ اپنے سائن بھی کر دیجئے، درود بھیجے محمد و آل محمد. جو مومنین اور مومنات آج حضرت عباس کے علم کی جو شبی برآمد ہو رہی ہے، اس لیے تشریف لائے ہیں، ان سے میری معذرت، میری یہ مجلس ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ پہلی محرم سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کا ایک پارٹ ہے، और बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, बहुत सारी बातें कल रात की मजलिस में आ गई हैं, तो वो तो वैसे ही उम्मल बनीन को उनके लाल का पुरसा देने आए हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब गम का बयान शुरू होगा तो असल जो हाजिरी है इस मजलिस में वो मकसद हमारा भी उनका भी पूरा होगा। शुरू में मैं उनसे माजरत कर लूं, आज मैंने कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की, ये आयत कुरान के उस सूरे की आयत है जिसके लिए इमाम मासूम ने एक तरह से उस रावी को डांटा था। रिवायत है ना कि सहाबी इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, तो इमाम ने उससे एक सवाल किया कि ये बता कि जो पूरा हफ्ता गुजरा है, ये पूरा वीक, इसमें तूने फजर की किसी भी नमाज में सूरह इमाम हुसैन की तिलावत की कि नहीं की? अब वो हैरान हो गया कि मौला कुरान करीम में तो इस नाम का कोई सूरह ही नहीं है, तिलावत तो हम बाद में करेंगे, पहले कुरान में वो सूरह तो मिले ना मौला। अब ये कुरान के 114 सूरे अरबी जानने वाले को तकरीबन सबके नाम भी याद होते हैं, और जबानी याद ना भी हो तब भी अगर कोई आपके सामने कोई नाम ले जो अरबी जानने वाले हैं, वो ये तो समझ जाएंगे कि ये कुरान में नहीं। माशाल्लाह कल उस बच्चे ने जो नोहा पढ़ा जिसमें तमाम शोहदाए करबला के नाम थे। देखिए ये है वो तरबियत के जो आगे चल के सारी जिंदगी यहां एक काम आएगी और कब्र और कयामत के लिए इंसान की असली असासा या दौलत बनेगी। तो माशाल्लाह किस तरह से, और इसी तरह से आजकल अल्लाह के 99 नाम, शहजादीए कायनात के नाम, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल एक नई बात थी कि सूरह इमाम हुसैन। मौला कुरान में तो ऐसा कोई सूरह ही नहीं है, मैं इसे कहां से नमाज में पढ़ूंगा? इमाम ने कहा है कुरान का एक सूरह ऐसा जो हमारे दादा इमाम हुसैन का सूरह है, हमारे जद का सूरह है, उसका एक नाम सूरह इमाम हुसैन है। कुरान के कई सूरों के दो नाम होते हैं। कभी कभार आम मोमिनीन जब से ये मुसीबत और बीमारी आई खून की शक्ल में आई और वो ये है कि हमने कोई सूरे का नाम दिया लिया और कहा कि इसकी फुला आयत में ही आया, उसने खट से आईफोन निकाला, वहीं मजलिस के दौरान चेक किया, कहा कि इस नाम का तो कोई सूरह ही नहीं है, मौलाना मेंबर से क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जो गलत सलत पढ़ जाते हैं उनको कोई चेक नहीं करता, और जो बहरहाल अपनी जगह सही है उसको सब चेक करते हैं। कई मरतबा ऐसा हो चुका। अब कुरान करीम में सूरह बराअत है, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में सूरह तौबा कहलाता, लेकिन आप हरम में जाते हैं यानी मक्के में मदीने में मस्जिद नबवी में आपने कुरान उठाया, या जब आप हज करके आते हैं तो आपको गिफ्ट के तौर पे जो कुरान दिया जाता उसमें सूरह तौबा नाम का कोई सूरह नहीं। सूरह दहर कौन सा मोमिन यह सूरह नहीं जानता, लेकिन अरब दुनिया में जो कुरान छपेगा तो इसका नाम होगा सूरह इंसान। तो गर्ज ये कि दो नाम होते हैं, आका हुसैन के नाम से भी एक सूरह, रावी ने कहा वो कौन सा है? अब इमाम फरमाते हैं कि सूरह फजर है, और मोमिन को चाहिए कि वीक में कम से कम एक मरतबा फजर की नमाज में, सूरह का नाम भी वल फजर है, फजर की नमाज में सूरह की तिलावत किया करे। तो इस सूरह का पहला हिस्सा भी डायरेक्ट करबला के लिए, इस सूरह का आखिरी हिस्सा भी डायरेक्ट करबला, और दरमियान में क्या है, मकसद करबला, इमाम हुसैन का मिशन, उसकी वजाहत। भाई इसकी पहली आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फजर व लयालिन अशर, फजर की कसम, नमाज फजर के बाद आशूरे में दुनिया भर में एक मजलिस होती है अजान अली अकबर की याद में, वल फजर, फजर की कसम, ये कौन सी फजर है? का लयालिन अशर, जो 10 रातों के बाद। अब मैं इस सूरे की तफसीर भी नहीं कर रहा हूं और आयतों का पूरा तर्जमा भी नहीं पढ़ रहा हूं, तफसीर तो छोड़िए क्योंकि वक्त नहीं है, अब तो गम की रातें हैं, मसाइब भी ज्यादा हैं, मजमे की अक्सरियत भी मुझे सुनने नहीं आई, अब्बास को पुरसा देने आई। तो ये सूरे का स्टार्ट है और सूरे का एंड क्या है, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, पहला फजर, आखिरी आयत आशूर की शाम करीब आ रही है, आका हुसैन जिहाद कर रहे और आवाज आ रही, बस हुसैन हक जिहाद अदा कर दिया, अब शहादत की मंजिल के लिए तैयार हो जा। ये दो आयतें इस सूरे की, जिसकी वजह से इस पूरे सूरे का नाम सूरह फज्र। मगर करबला के शुरू और करबला के आखिर में, बीच में भी बहुत सारी आयतें, जो मैंने जुमला आका हुसैन के लिए कहा, हमारे आका हुसैन या 6 साल तक की उम्र हमको मालूम है, जब तक नाना जिंदा थे, कि रसूल मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, खुतबा तोड़ दिया हुसैन के लिए, नमाज में सिजदा कर रहे हैं, सिजदे को तूलानी किया हुसैन के लिए, मुबाहले में निकले तो हुसैन को गोद में लेके निकले, और या फिर 28 रजब से हुसैन हमारे पास आते हैं। तो ये 6 साल से लेके 57 तक के जो बीच के 50 साल हैं, ये कहां गए? इसमें आका हुसैन मदीने में कूफे में क्या कर रहे थे, वो हमारे यहां जिक्र नहीं होता है। वही सूरह फज्र की बात, अव्वल आशूर की फज्र, आखिर सूरह आशूर के असर के भी बात का वक्त, बिटवीन असर एंड मगरिब, बीच में क्या, बीच में आका हुसैन के मिशन के हवाले से बहुत अहम अहम बातें। मगर आज उन बातों की तफसील में जाने का मौका नहीं है, सिर्फ उसमें से एक चीज बताई जा रही। और हमारे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन भी, या सलूशन न कहिए तो उसका रीजन भी, कि अल्लाह अगर किसी को इज्जत और एहतराम इस दुनिया में देता, टू बी ऑनर्ड बाई अल्लाह, इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो ये लिखा हुआ, तो उसका रीजन क्या? और अगर कोई आदमी इस दुनिया में जलील होता तो आखिर उसका रीजन क्या? कुरान करीम रूट कॉज बता रहा है कि वजह क्या है कि किसी को अल्लाह की तरफ से इज्जत मिलती और कोई जलील होता। सूरह फज्र, आयत भी सूरह फज्र की है और आधे सूरह के बाद ही पहली वाली आयतें भी बहुत अहम, इन रब्बका लबिल मिरसाद, कि तेरा रब पुले सिरात पे तेरा इंतजार कर रहा है। कौन लोग हैं जिनका पुले सिरात पे इंतजार हो रहा? कल रात की मजलिस में जो बात आई थी वो लोग, जो आज की मजलिस के शुरू में बात आएगी वो लोग। लेकिन मैंने कहा ना कि पूरे सूरे के तर्जमे का वक्त भी नहीं है, तफसील तो छोड़ी, सिर्फ ये आयतें। कुरान ने कहा फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमहु, अजीब है ये इंसान, जब अल्लाह इसका इम्तिहान लेता, एक ट्रायल, एक टेस्ट, फअक्रमहु, इसे इज्जत वाला बनाता है, वनअमहु, और इसके घर में नेमतें आती, बहुत शानदार मकान, बेहतरीन गाड़ी, बहुत चलता हुआ बिजनेस, एक आउटलेट से 10 आउटलेट बना लिए। मौलाना आगे तशरीफ लाइए, आप लोग दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमहु, अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया, ये इम्तिहान है, ये टेस्टिंग है, और इसको इज्जत दी और नेमतें दी। फयकूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे बहुत इज्जत दी, इकराम वाला बनाया, टू बी ऑनर्ड बाई अल्लाह। और जब अल्लाह ये इम्तिहान लेता है कि रिस्क में कमी कर देता, फयकूल रब्बी अहानन, तो कहता है कि मेरे रब ने मेरी इंसल्ट की या इहानत की या तौहीन की। कुरान कह रहा है कल्ला, तुम्हारे घर में अगर कभी रिस्क की कमी आती है तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। दो रीजन कुरान ने बहुत वाज़े बताए, एक सूरह ताहा में, रसूलुल्लाह का टाइटल, कुरान का सूरह नंबर 20, वमन अअरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी मईशत को, इसकी इकोनॉमी को, उसके इनकम को बहुत कम कर देंगे, जो मेरे जिक्र यानी नमाज को छोड़ेगा। नमाज है जो बरकतें लेके आती, नमाज है जो रिस्क के अंदर वसत लेके आती, ये सूरह ताहा और ये सूरह फज्र। वो नाना का सूरा है, ये नवासे का सूरा। और ये दोनों नाना और नवासे ऐसे जिन्होंने इस यूनिवर्स को एक लफ्ज दिया, मोअल्ला। मोअल्ला कहते बहुत बुलंद, ये लफ्ज जो मोअल्ला है ये नाना और नवासे ने मिलकर दिया। नाना के कदम अर्श पर गए तो अर्श अर्शे मोअल्ला कहलाया, नवासे के कदम करबला में आए तो करबला करबला मोअल्ला कहलाया। वो नाना का सूरा है ताहा, ये नवासे का सूरा है सूरा इमाम हुसैन। एक रीजन वहां पे आया कि क्यों तुम्हारे घर में परेशानियां आती हैं, अपने घर की परेशानियां अल्लाह को ब्लेम ना करो या इंसानों को भी ब्लेम ना करो। हमारी औरतों का तो अजीब नेचर है, कोई परेशानी आएगी कोई हम पे जादू करा रहा, कोई परेशानी आएगी तावीज गंडे के पीछे जाएंगे। 100 में कोई एक ऐसा होता है जहां तावीज की जरूरत होती है, 99 केसेस ये रीजन है जो कुरान बता रहा। लेकिन मैंने कहा कि ये मौजू कुछ और बन जाएगा, गर्ज जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से ये बताना बहुत जरूरी कि एक सही बीवी को कैसा वफादार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो एक कल से एक बात चल रही है उसको तो कंप्लीट करूं। तो कुरान ने एक वजह वो बताई जो नाना के सूरे में है, एक वजह यह बताई जो नवासे के सूरे में, कल्ला। हरगिज अल्लाह ने किसी के रिस्क को कम नहीं किया, कल्ला हरगिज नहीं। बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुम यतीम का हक अदा नहीं करते हो। यतीम किसे कहते हैं? 3 दिन पहले के मजलिस में यतीम की एक डेफिनेशन आई है, उसको जहन में रखिएगा, बात फिर वही खुम्स तक जाएगी लेकिन अब वक्त नहीं। वला तो आजून आला तामिल मिस्किन, मिस्किन के खाने का इंतजाम नहीं करते। ताकुलून तो रासाकलन लंबा, मीरास इनहेरिटेंस ग्रेडी बन के, ग्रेडी ये भी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा, मुझे तो पता भी नहीं इसका मतलब क्या। लालची बन के तमा करते हुए ग्रेडी बन के तुम मीरास के माल को खा जाते हो। और क्यों खाते हो? तो हिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत जमी हुई। तो कुरान करीम हमारे घर में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज या रीजन बता रहा कि तुम्हारे घर में माल हराम आता है खास तौर पर। अब मैं जो मजमा रेगुलर आ रहा है उसको सामने रखते हुए बाकी मोमिनीन से मैं उनके चेहरे देख रहा हूं, वो बहुत परेशान हैं कि आज हजरत अब्बास की मजलिस में ये क्या बातें बयान की जा रही है। लेकिन मेरी उनसे सिंसियर अपोलॉजी, मैं अपना टॉपिक भी चेंज नहीं कर सकता कि कुरान कह रहा कि तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम आते जिसकी वजह से तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने दुनिया के सामने तुम्हें जलील किया और तुम्हारी इंसल्ट हो गई, उसका रीजन तो देखो। उसका रीजन वो तावीज और गंडे और जादू और फाल और मुख्तलिफ ऐसे फ्रॉड लोगों के पास जाना नहीं है, उसका रीजन तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे अपने हाथ में। ताकुलून तुरास मीरास इनहेरिटेंस। अच्छा ये भी एक जुमला कह दूं ताकि जो मेरा टॉपिक है वो भी और जो आज की रात ये आलम है अब्बास जो मेरे राइट पर भी है जो मेरे लेफ्ट पर भी है शबी आलम, ये कौन सा आलम है जो अब्बास को मीरास में मिला है अपने बाबा से? आलम तो असल में अली को दिया था ना। आप में से जो लोग पाकिस्तान के हैं उनको वो वाकया याद होगा कि 1961 में जब मलिका एलिजाबेथ, और वो तो उस वक्त बहरहाल उसकी जवानी थी, पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त अयूब खान थे, फील्ड मार्शल हैं कि जनरल है, इस बहस को छोड़िए। चुनाचे जो तरीका होता है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद आर्मी ने उनके सामने मार्च पास किया, अलग अलग आर्मी की दस्ते आ रहे हैं मार्च पास है, जब मेहमान के सामने पहुंचते हैं तो वो सलाम करते हैं आलम को झुका के, जो फ्लैग होता है आर्मी के पास। मगर एक ऐसा दस्ता गुजर रहा है कि उसका फ्लैग नहीं झुकाया गया, वो हैरान हो गई क्योंकि ये तो एक साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो गया। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को कहना पड़ा ये वो आलम है जो कभी ना झुका है ना कयामत तक झुकेगा। खैबर के मैदान में जो आलम दिया गया था वही आलम था जो इससे पहले झुका, भागे भी लोग आलम लेके, लेकिन जब एक मर्तबा वाला ओतेन रायता गदन फजलन कर्रारन गैरा फर्रार कर्रार और गैर फर्रार के हाथ में आया तो वहां से कयामत तक ये आलम कभी नहीं झुकेगा। यही आलम मीरास में मिला अली से अब्बास को। और अगर आगे जुमला कह दूं जो मेरा असल मौजू बनता रहता है, और फिर वहां से जमाने के इमाम के पास हम और आप एक बार फिर इस आलम की जियारत करेंगे जब हमारा इमाम आएगा। लेकिन फिलहाल बात यह हो रही अब्बास, अब्बास वारिस है अली का। देखिए इमामत के वारिस तो हुसैन है, आई कथीर के वारिस तो हुसैन, बाबा की जगह उनके सक्सेसर हुसैन, लेकिन अब्बास की यह खासियत कि अली की बास फजीलतें खास अब्बास के लिए हैं, इसमें अब्बास उनका वारिस बना। जिनमें से आलम पैगंबर ने यह अली को दिया है, अली के बाद यही आलम अब्बास को मिला। अच्छा वैसे लोग कितने ही फतवे लगाते फिरे कि आलम बनाना भी शिर्क है, उठाना भी शिर्क है। चले हमने यहां तक बात मान ली, आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फतवे पे बिलीव करने वाले हैं, जो दिल चाहे कहिए। आलम देखना भी शिर्क है, निकाह टूट जाते हैं। लेकिन आज का मुसलमान ये कह रहा है ना, खैबर की रात जाके देखिए तमाम रात असाबे रसूल को नींद नहीं आई, बिस्तर पे तड़प तड़प के गुजार रहे हैं, क्योंकि रसूल ने ये जो कह दिया कि लौतियन राया आलम दूंगा, तो ऐसी तमन्ना है आलम की, ऐसी तड़प है कि सारी रात जाके गुजारा, अगली सुबह को रसूल के पास गए, उनको रसूल भी मान रहे हैं, और हालत यह है कि रसूल के सामने जाके अपने आप को गिरा भी रहे। कैसा ना हो कि रसूल भूल जाए, हमें ना देखें, तो इस तरह से गिर जाओ कि रसूल को पता चले कि हाँ ये भी एक उम्मीदवार और कैंडिडेट है आलम के लिए। मगर रसूल उधर तो आलम का ऐलान करते हैं, और इधर खुद अजीब तरीका इख्तियार करते हैं कि आधी रात को खेमे से निकल के मदीने का रुख करते हैं और कहते हैं नादे अलियन मजहरा लजाए। इसका तर्जमा क्या है? अली को बुलाओ। या रसूल अल्लाह, आप डायरेक्ट अली को बुलाइए, ये तो अल्लाह ने कहा ना, नादे अलियन का मतलब कि अय रसूल तुम अली को बुलाओ। तो ये अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? यानी अली से डायरेक्ट अल्लाह कह देता पहुंच जाओ खैबर के मैदान में, डायरेक्ट अली को हुक्म मिल सकता था कि आ जाओ खैबर के मैदान में, रसूल से कहा गया तुम बुलाओ। क्यों कहा? इसलिए कि आलम के ऊपर एक फतवा यह लगेगा कि आलम बिदअत है, हराम और शिर्क फिर भी अलग चीज है, बिदअत। अच्छा बिदअत का काउंटर क्या चीज होती है? बिदअत के उलट क्या चीज होती है? बिदअत के उलट होती है सुन्नत। सुन्नत और बिदअत, इन दो का मुकाबला होता। कहा कि हम रसूल के जरिए बुलाएंगे, क्योंकि आलम को बिदअत कहा जाएगा तो हम कहेंगे रसूल बुलाए, ताकि अली को बुलाना सुन्नत रसूल करार पाए। अगर आलम के खिलाफ हराम का फतवा लगता तो अल्लाह डायरेक्ट बुलाता, क्योंकि हराम के सामने वाजिब आता और बिदत के सामने सुन्नत आता, और वाजिब और सुन्नत दो चीजों का नाम इस्लाम है। तो एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, इसके बाद जो अपना मौजू चल रहा है मीरास, ये मीरास में मिला, छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, और वो ये है कि जब अली खैबर को किले को फतह करके वापस आए, खैबर का दरवाजा उखाड़ा और खैबर के किले में एंटर हुए, तो जब ये दरवाजा अली ने खैबर का दरवाजा तोड़ा या उखाड़ा, तो लोग हैरान हैरान रसूलुल्लाह के पास आए थे ना। अच्छा अब आगे बात करने से पहले मैं एक जुमला हमेशा समझाने के लिए कहता हूं, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये हमारी तीसरी मजलिस में तफसील से रिवायत भी आई, आपने जिंदगी भर सुनी, मैंने एक और एंगल से इस रिवायत को वाजे किया कि अली के चेहरे को देखना इबादत, और लोग समझते हैं कि ये मौला की बहुत बड़ी फजीलत। लेकिन उसी दिन मैंने कहा था कि नहीं, ये अली की बहुत बड़ी फजीलत नहीं है, इसलिए कि कुछ और भी चेहरे हैं जिनको देखना इबादत है, मसलन वालिदैन का चेहरा, मसलन मां का चेहरा। और शायद ये जुमला भी कहा था कि इसकी मजीद वजाहत आगे होगी तो आज की मजलिस, और वो ये है कि अली का चेहरा देखना इबादत है, एक इबादत है, लेकिन सही मानों में इससे अली की फजीलत समझ में नहीं आती है, हक अदा नहीं होता है। वो इस जुमले से समझ में आएगी। कौन सा जुमला? कि मुसलमान हैरान हैरान रसूलुल्लाह के पास भागे भागे आ रहे हैं। अच्छा, अली तो अपना जिहाद कर रहे हैं, अली आगे बढ़ रहे हैं, दरवाजा तोड़ा, अब किले में एंटर हुए, मरा बंतर और उसके बाद बाकी जो कुछ भी जिहाद। मुसलमान अली के साथ नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, आपने देखा अली ने अकेले इतने बड़े दरवाजे को जिसे खाली पुश करने के लिए 40 आदमी चाहिए किस तरह से उखाड़ा और अपने हाथ में ले लिया। पैगंबर ने मुस्कुरा के वो जुमला कहा जो हर एक को याद, तुम अली के हाथ को देख रहे हो कि उसमें खैबर का दरवाजा है, अली के पैरों को जाके देखो। लोगों ने जाके देखा, वाकया सुना, लेकिन मैं तो कुछ और एंगल से बात कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा अली के पैरों को जाकर देखो, 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 ये एक ऑर्डर है, ये एक अमर है। अब उलमा भी बैठे, हलिल अमरो यदुल्लो आलल वजूब अविल इस्तेहबाब, तलबुल फेल माह माने मिनत तर्क और तलबुल फेल माह इज्न फित तर्क। खैर, बात जरा सकील हो गई, बहुत आसान करता हूं, बहुत आसान। अली के पैरों को देखो, रसूल जब कोई ऑर्डर देगा या वो वाजिब होगा या वो सुन्नत होगा। ऑर्डर इन्हीं का दिया जाता है, वाजिब हो तब भी इबादत है, सुन्नत हो तब भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत न समझो, अली के तो पैरों को देखना भी इबादत है। और इस लेकिन, अच्छा अब इससे पहले कि इस लेकिन को आगे बढ़ाऊं, अब आप हजरात से एक रिक्वेस्ट है, इस मजलिस में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इसके बाद वक्त नहीं होगा, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मोमिनीन कराम मुसलसल आ रहे हैं और पीछे की जानिब जगह बहुत कम होती चली जा रही, तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आप भी, कहने की जरूरत नहीं। जो आदमी, जो मोमिन इस सफे अजा में कोई जगह देखे कि कोई गैप है, वो वहां आ सकता है, तो खुद ही आप हजरात वॉलंटियर ही जितना आगे आ सकते हैं आगे आ जाए, ताकि बाद में ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो, ना आने वालों को तकलीफ हो, ना आपके लिए जहमत हो। बाकी मोमिनीन खामोश क्यों बैठे? इस दौरान बावाज़ बुलंद दुरूद भेजें। लेकिन खैबर में एक और बहुत अहम हदीस आई है जो अभी मेरे मौजू से जाके मिलती है। ये तो आपने अली की मोहब्बत के पहले दो हिस्से सुने, कल वाली हदीस, जबान से अली का नाम लिया, दिल आपका इस वक्त खुशी से भर गया होगा जब फजाइल सुने होंगे। अब एक तीसरा मरहला भी तो है ना, सीरत अली, वो भी खैबर में एक मैसेज आता है, लेकिन उसी के लिए मैं पहुंच रहा हूं। लफ्ज ताकुलून तुरास आकलन लंबा तक अब्बास को ये सारी चीजें मीरास में मिली, बाबा की तरफ आलम हो, मुश्किल कुशाई हो, हाजतों को पूरा करना हो, आका हुसैन की मदद हो, यह भी मीरास है। जनाब अब्बास का जो एक ही मशहूर खुतबा है किताबों में, यही तो कहा कि मैं इसी तरह से अपने आका का वफादार जानिसार जैसे मेरा बाबा रसूलुल्लाह का वफादार और जानिसार था। ये मीरास में अली अब्बास को मिला, मगर अब्बास की मीरास से पहले कुरान करीम के इस मैसेज पे गौर कर दें कि ताकुलून तुरास आकलन लम्मा, तुम्हारे प्रॉब्लम, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि तुम लोग मीरास सही तरीके से तकसीम नहीं करते हो। अब्बास किसका बेटा? उम्मुल बनी नहीं, फातिमा ज़हरा। शहजादी ने बार बार कहा अब्बास मेरा लाल, अब्बास मेरा बेटा। फातिमा, सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ था? कोड़ा, घर जलना, मोहसिन की शहादत? नहीं, फातिमा के लिए सबसे बड़ा जुल्म था, फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बड़ा मेंटल टॉर्चर होता, सबसे बड़ा जुल्म फातिमा के लिए था, मैं ताहिरा हूं, मैं सिद्दीका हूं, मेरी सच्चाई को मुबाहले के मैदान में दुश्मनों ने माना, और जब मैं मीरास का दावा लेकर गई तो मुसलमान कहता है तुम झूठ बोल रही हो थोड़े से पैसे की खातिर। कोड़े का जख्म बर्दाश्त है, बेटे की शहादत बर्दाश्त है, सिद्दीका ताहिरा मासूमा आलम, और उसके बारे में ये कहा जाए कि वह गलत बयानी कर रही है और झूठ बोल रही है, नऊज़ु बिल्लाह। और वह भी मसला मीरास, जो माना हुआ मसला है कुरान का भी और इस्लाम का भी, वहां मीरास, फातिमा का लाल अब्बास वहां पे मीरास, और कुरान करीम कहता है ताकुलून तुरास अकलन लम्मा। अब देखिए, अब जरा सी सीरत अहले बैत की बात, और वो ये कि गुनाह तो आदमी गैर मासूम में हो जाते हैं, लेकिन हर गुनाह एक ही जैसा गुनाह, एक ही जैसा गुनाह आप तीन मरतबा करेंगे, जरूरी नहीं है कि तीनों मरतबा का पनिशमेंट सेम हो। उतनी ही शराब आपने आज पी, नऊज़ु बिल्लाह, आपसे मतलब आप नहीं होते हैं तो स्टाइल है कहने का, किसी ने आज पी, किसी ने कल पी, किसी ने परसों पी, वही शराब, वही एक बॉटल, वही उसकी क्वांटिटी। लेकिन आज अगर अपने घर में पी है शराब, कल किसी मस्जिद में बैठ के शराब पी, परसों खाने काबा की छत पे बैठ के शराब पी, आखिरी जमाने के साइन ऑफ जुहूर में ये भी है ना कि मैं उस आदमी को देख रहा हूं जो काबे की छत पे बैठ के शराब पी रहा है और काबे को डिमोलिश कर रहा है। लेकिन ये मेरा चूंकि इस साल का टॉपिक नहीं है, तो क्या तीनों का गुनाह बराबर? शराब चाहे घर में पियो या काबे में पियो, एक ही जैसा अल्लाह की नाराजगी? नहीं, गुनाह एक है शराब, लेकिन कहां पे ये शराब पी गई है उसकी वजह से गुनाह जो है उसकी शिद्दत के अंदर फर्क पड़ता चला जाता। बहुत ज्यादा मिसालें देने की जरूरत नहीं, हमने किसी को फिजिकल टॉर्चर किया और एक थप्पड़ उसके मारा, एक आम आदमी, और हमने अपनी मां के ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया और उसको मारा, वही प्रेशर, वही फोर्स, उतनी ही ताकत, बल्कि शायद मां को जरा सा हल्का मारा, लेकिन मारा, तो क्या दोनों का गुनाह बराबर? हर आदमी जानता है, चाहे इस पे अमल करे कि ना करे, एक आम मोमिन के मुकाबले में मां का जो एहतराम और रिस्पेक्ट इस्लाम ने बताई, मुतवक्किल जैसा जालिम। अभी लोग तैयारी कर रहे हैं अरबईन पे करबला जाने की, करबला का नाम निशान मिटाने की कोशिश किसने की? मुतवक्किल ने की। और एक जुमला यहां पे जरूर कह देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब पूरी दुनिया में आजकल लब्बैक या हुसैन का नारा लगता है दिल को खुशी होती है, और ये नारा जब नहीं भी था तो हमारे यहां हमेशा ज़ियारत इमाम हुसैन के आखिर में हम कहते थे फया लैतनी कुंतु माअकुम फअफूज़ा माअकुम, हमेशा से रवाज है, मौला काश में आपके साथ होता। मगर लब्बैक या हुसैन से लेकर फया लैतनी कुंतु माअकुम तक हम कहते तो हैं, फिर करते क्या है? क्या अगले दिन या मजलिस से जाने के बाद हुसैन के मिशन की जानिब हम कितना आगे बढ़े? नस्लें जनरेशन गुजर गई फया लैतनी कहते हुए। मुतवक्किल के बारे में एक जुमला कह रहा हूं, मुतवक्किल इतना सख्त दुश्मन है अहले बैत का, हालात बताने का वक्त नहीं और शायद जरूरत भी नहीं। मुतवक्किल इतना सख्त दुश्मन है अहले बैत था कि यजीद के 200 साल के बाद आया और कहता था काश मैं यजीद के साथ करबला में होता तो अहले बैत पर जुल्म करने में मेरा भी सवाब होता, मेरा शेयर। यानी वो भी फया लैतनी कहता है फया लैतनी कुंतु माअकुम, यजीद को याद कर। हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, वो कहता था लब्बैक या यजीद। इतना सख्त दुश्मन 200 साल के बाद कहता है। आज भी कुछ ऐसे दुश्मनान अहले बैत पैदा हो गए हैं, लेकिन इससे पहले तारीख में, लेकिन उसने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मैं खाली जबान से कह रहा हूं लब्बैक या यजीद, खाली मैं जबान से कह रहा हूं फया लैतनी, कुछ एक्शन तो करके दिखा नहीं रहा हूं, नहीं खाली जबान से कहना है ना, नहीं कुछ करना पड़ेगा। सोचा हुसैन तो मारे गए, मैं क्या करूं? कहा हुसैन की कब्र और रोजे का नामो निशान मिटाओ। यजीद ने हुसैन को फिजिकली खत्म किया, मैं हुसैन के रोजे को खत्म करूं। दुश्मन से भी आदमी को कभी कभार कोई चीज, कोई मैसेज लेना चाहिए। हम और आप तो वो साहिबान ईमान है कि मां के पेट से ये जुमला सुनती आए हैं फया लैतनी कुंतु माअकुम। कभी सोचा? एक दिन तो छोड़िए लास्ट ईयर और एक ये साल, पूरा इस साल गुजर गया, आपने अलम अब्बास लास्ट ईयर भी उठाया, आज भी उठा रहे हैं, कितना फॉरवर्ड हुए आप हुसैन के मिशन के लिए। फयाल ऐतनी का क्या प्रैक्टिकली एस्पेक्ट आपकी लाइफ में नजर आया? सोचना सोचना, मुतवक्किल सोच रहा है, हम इतना भी नहीं सोच रहे। लेकिन जबकि मुतवक्किल उन लोगों को मानने वाला जिनके यहां सोचने का कंसेप्ट ही नहीं है, जो ऊंट और ऊंटनी का फर्क महसूस नहीं करते, उनका लीडर जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दे तो पढ़ लेते, और हम उसके मानने वाले हैं जो ऐन अकल है और हर चीज में कहता है कि अकल इस्तेमाल करो, और हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये तो बहुत जर्नलाइज बातें हो रही हैं, तो मैं खास पार्टिकुलर अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊं। मुतवक्किल जब उसके मजालिम इतने बढ़ गए कि करबला में बैलों का हल चलाया और दरियाए फरात, वो सब जियारत में आप सुनते भी रहते हैं, बल्कि जियारत पर नहीं भी कोई गया हो, क्यों ना गया हो, खुदा हर मोमिन मोमिना को करबला की जियारत सबसे पहले और चारदा मासूमीन की जियारत का शरफ अता करे। और क्या कहना उस जियारत के कि हम आका को सलाम करें तो आका हमारे सलाम का जवाब भी दे दे। खैर, तो बात यह हो रही कि मुतवक्किल के जब इतने मजालिम बढ़ गए, उसके अपने बेटे ने तमाम उलमा से एक फतवा लिया जो इतना अहले बैत का दुश्मन, उसके बारे में क्या हुक्म है, सब उलमा ने मिलकर एक ही बात कही, उसको कत्ल करो। आखिर में वो पहुंचा इस यकीन के साथ कि सबसे पहले जो मेरे इस एक्शन को यस कहेंगे वो दसवें इमाम होंगे, उनका जमाना चल रहा है। आखिर में उनके पास गया कि इनके तो साइन कन्फर्म है। कहा मौला मेरा अपना बाप है लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। कहा तेरा बाप वाजिबुल कत्ल है लेकिन खबरदार तू इसके कत्ल में हिस्सा नहीं ले। कहा क्यों? कहा क्यों तेरा बाप, बाप कैसा ही बुरा क्यों ना हो, बेटे पे उसकी एक किस्म की रिस्पेक्ट है, वाजिबुल कत्ल है, उसका खात्मा दूसरे तरीके से करो, लेकिन बेटा अपने बाप पे चाहे मुतवक्किल जैसा बाप क्यों ना हाथ नहीं उठा सकता। और यहां हमारी और आपकी हालत, बाप और मां जसला एक टिश्यू इस्तेमाल करके फेंक दिया उठा के, जस्ट लाइक डिस्पोजेबल प्लेट कि बस इस्तेमाल किया बचपने में, उनको फेंक दिया उठा के। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि बात टॉपिक से हटी हटी नहीं। मां को अगर मारा या बाप को अगर मारा, क्या इतना ही उसका गुनाह है जितना आम आदमी को? फर्क है कि फर्क नहीं? अब कितनी ही मैं मिसालें देता चला जाऊं, आदमी ने किसी का माल खा लिया, कल रात की मजलिस का आखिरी हिस्सा, माल हराम, कितनी हमारी खराबियों का रीजन ये, जो भी एक लुकमा हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर फिजिकली भी हमारा खून बनता है और हमें ताकत देता, और स्पिरिचुअली भी हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी दुआ, उसमें सारी पावर आती है जो लुकमा हमने खाया हराम का है कि हलाल का। लेकिन माले हराम तो हराम है ही, हर एक को पता, एक आम आदमी का माल खाया, रिश्तेदार का माल खाया, मां बाप का हक खाया, जैसे थप्पड़ मारना, जैसे शराब पीना, जैसे किसी की इंसल्ट करना, आम मोमिन की इंसल्ट किया, मां की इंसल्ट आपने मजमे के सामने कर दी, नहीं मजमे के बगैर भी ना करें, मेरे जुमले से इंप्रेशन ना मिले कि हां लोगों के सामने नहीं करो, घर में खूब अच्छी तरह से, क्योंकि आपको शौक दिलाने वाली एक बीवी की शक्ल में कोई बैठी भी होगी घर में, नहीं माशाल्लाह अटलांटा की मोमिनात सुना है बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है, लेकिन इन जनरल बात तो आप, खुलासा यह है कि जितना आपसे कोई क्लोज है गुना बढ़ता जाता। मीरास 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 ताकुलून अतुरास आकलन लंबा, आका अब्बास से लेके हमारे घर तक की मीरास, इसमें जब आप गड़बड़ करते हैं तो किसी आम मोमिन का माल नहीं खा रहे, सगे भाई का, सगी बहन का, बल्कि ये तो बहुत बाद में आते हैं, यूजुअली तो मीरास वहां तक जाती नहीं है, अपने बाप, अपनी मां या अपनी सास और अपने खुसुर। मीरास का क्या मसला, शौहर मर गया तो अब इसके माल में उसके बाप और मां का हिस्सा भी, चाहे ये बीवी सारी जिंदगी उससे नफरत करती है और हेट करती है। जितने क्लोज आदमी का हक जाय करेंगे, जितने क्लोज के ऊपर जुल्म करेंगे, जुल्म वही जुल्म होगा लेकिन उसका पनिशमेंट और उसकी सजा बढ़ती जाएगी। और हमारे यहां इस्लाम बेशक कहता रहे कि हाईली रिकमेंडेड अमल अपनी विल और वसीयत तैयार करना है ताकि मीरास में गलती ना हो, हर एक को ये मालूम, ऐसी वर्डिंग के साथ वसीयत वाली हदीस आई, ऐसी वर्डिंग है या तो मैंने मारे उसके बारे में अर्ज किया था कि हसद का गुना, मोहब्बत अली की नेकी और हसद का गुना, वो हदीस आपको मैंने पढ़ के सुनाई थी शबे जुमा, अब तो वक्त नहीं है उसको रिपीट करने का या उसके पॉइंट को रिपीट करने का। मम माता वलम यारिफ इमाम जमान ही माता मीतल जाहिलिया, जो मारिफत इमाम के बगैर मरेगा वह जाहिलियत की मौत मरेगा, ये तो हर एक को मालूम। मम माता बगैर वसीयत फकत मीता फकत माता मीतता जाहिलियत, और जो अपनी विल तैयार किए बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरेगा। या इमाम जमाना की मारिफत के लिए हदीस आई है और या फिर वसीयत के लिए हदीस आई है, इससे अंदाजा करें कि कितना इंपॉर्टेंट यह अमल। वो मासूम की मशहूर हदीस, मोमिन हर काम ठहर ठहर के स्लोली करता, थोड़ा सोचकर, फौरन नहीं, लेकिन पांच कामों में मोमिन से ज्यादा जल्दी कोई नहीं करता। जल्दी का मतलब फास्ट नहीं, एज सून एज पॉसिबल। नंबर एक नमाज, हर काम में डिले होगी लेकिन नमाज का वक्त आया, कोई शरई रीजन हो तो अलग बात है, हज है, मगरिब ईशा की नमाज मुज़दलिफा में लेट पढ़ने का हुक्म है, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, लेकिन नमाज इधर टाइम आया एज सून एज पॉसिबल। उर्दू में लफ्ज जो है ना वो जरा सा मिसकंसेप्ट पैदा करता है, जल्दी पढ़ो नमाज, समझते हैं जल्दी का मतलब फास्ट। जैसे आजकल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है कि फास्ट से फास्ट से फास्ट, इधर अल्लाह अकबर कहानी तो हमने पलट के देखा, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के खत्म कर रहा है नमाज। फास्ट नहीं, सुन, जैसे ही वक्त आ जाए अब वाले वक्त। वो जो कसाई अजाब खुदा से बचा था, कब्र का मशहूर वाकया, दो ही रीजन तो बताए थे कि नमाज मैंने हमेशा अव्वल वक्त पे पढ़ी और दूसरा यह कि कारोबार में कभी फ्रॉड नहीं किया, वो सांप जो काट रहा था और सांप का मसला बहुत मशहूर वाकया है, खासतौर पर जाफरी सेंटर अटलांटा में, मुझसे पहले कई लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो खुलासा यह है कि नमाज, दूसरी क्या चीज है, वसीयत। ये नहीं कि अच्छा कल बनाएंगे, छह महीने बाद बनाएंगे, अकाउंटेंट से बात कर लें, अपने एसेट्स चेक कर लें, अगले साल नहीं, एज सून एज पॉसिबल, हर रात सोते वक्त की वसीयत तुम्हारे तकिए के नीचे। और फिर यह है कि कर्जे की अदायगी, हर एक टॉपिक अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर है कि बेटी की शादी, और फिर आखिरी चीज है तौबा। हाँ नहीं मौलाना, बहुत आपने आज अच्छा बयान किया, समझ में आ गया नमाज की अहमियत, कल से शुरू करेंगे, नियत अभी करना है आपको। दाढ़ी हाँ हाँ नहीं, अगले महीने के बाद रख लेंगे, अभी दो तीन शादियों में शिरकत करना है, फोटो अच्छा नहीं आता, लेकिन अभी इसी मिनट तौबा फौरन। पांच चीजें, वसीयत। वसीयत पर इतना एम्फेसाइज इस्लाम ने क्यों दिया, इसलिए कि उसके जरिए वारिसों का हक महफूज रहता। अब वो मशहूर वाकया पढ़ ही दूं, कसाई वाला वाकया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये वाकया भी बहुत मशहूर। अलबत्ता अगर ये कहूं तो गलत नहीं है कि वाकया कम अज कम लास्ट 35 ईयर्स में पहली बार मैंने पढ़ा, फिर मशहूर हो गए। बनी इसराइल बहुत ही ज्यादा पैसे वाला घराना, बहुत ही मालदार, लेकिन शौहर राहे खुदा में बहुत खर्च करता और बीवी भी उसकी हेल्प करती थी, रोकती नहीं थी। जितना शौहर खैरात करता है, चैरिटी करता है, उससे ज्यादा बीवी को शौक। लोग कहते भी थे कि भाई कुछ फ्यूचर का ख्याल करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई इंश्योरेंस ले लो, कुछ पैसे अपने बच्चे के लिए रख जाओ, छोटा सा बच्चा भी है 8-9 साल का। कहा कि नहीं, वो अल्लाह मौजूद है, वो ख्याल करेगा। और होता यही कि जब राह खुदा में खर्च करो, जो जाता है वो जाता नहीं है, वो 70 टाइम्स वापस बढ़ के आता है। तो ये खर्च किया जा रहा है, दौलत आ रही, ये खर्च किया जा रहा है, उससे ज्यादा आ रहा। यहां तक कि शौहर की सडन डेथ हो गई, औरत भी जवान, शौहर भी जवान था, बच्चा सिर्फ 9 साल का। अब डेथ हो गई तो इसका मतलब यह है कि आगे इनकम का सोर्स खत्म हो गया। आजकल नहीं, बनी इसराइल औरतें काम नहीं करती, जो शौहर छोड़ के गया बस इसी में गुजारा करना। एक बार दिल में ख्याल आया कि अब जब सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है, तो जो मेरा शौहर छोड़ के गया, अब मुझे जरा इतना खर्च नहीं करना है राह खुदा में, जरा सा मुझे बजट बना के खर्चा कम करना होगा, ताकि कम अज कम बच्चे के बड़े होने तक और सेट होने तक घर चल जाए। अच्छा, अपनी जगह पे थिंकिंग बहुत अच्छी, मगर इमाम ने कहा यह शैतान का ख्याल था, उसका रीजन अभी आ रहा है क्यों। फौरन इसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि नहीं भाई, जब शौहर जिंदा था तो क्या शौहर की वजह से हमारी इनकम थी? रोजी देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, शौहर नहीं है। अल्लाह तो जिंदा है ना, वो तो नहीं मरा ना, वह हुआ हय्युन ला यमूत, उसे तो कभी मौत नहीं आती। मैं अपना तरीका नहीं चेंज करूंगी, उसी तरह राह खुदा में खैरात। बच्चा भी बालिग हो गए, शब जुमा सोई तो एक अजीब ख्वाब देखा। क्या देखा? कि मैं जगह खड़ी हूं राइट साइड से, बड़ी अच्छी, बहुत ही प्लेजेंट, एक ब्रीज अच्छी और खुशगवार हवा चल रही, और लेफ्ट साइड से एक बहुत ही खतरनाक गरम गरम हवा आ रही है, जिसे उर्दू में मसलन लू कहते हैं। और राइट साइड से खाली हवा नहीं आ रही, औरतों के, मर्दों के, लोगों के हंसने की, मजाक करने की आवाजें आ रही, जैसे हमारी मजलिस में आप ये सुनते होंगे पार्टीशन के पीछे से। और लेफ्ट साइड से लोगों के चीखने की और पेन और क्राइंग और इस तरह की आवाज। अब ह्यूमन नेचर पहले राइट साइड पे गई, ऐसी जगह उसको नजर आई कि ख्वाब में भी कभी नहीं देखी थी। ये हमारे उर्दू का एक मुहावरा है, फला चीज ख्वाब में भी नहीं देखना, इतनी खूबसूरत ये कौन सी जगह। का हाज ही रोजतुन मिन रियाजुल जन्ना, ये जन्नत के गार्डन में से गार्डन एक बाग। अच्छा, जन्नत इतनी खूबसूरत है, बहुत इसने सुना था लेकिन आंख से देखना। और जन्नत के बिल्कुल बीच में एक इंतहाई शानदार पैलेस या कैसल या महल, ये किसका? का ये तेरे मरहूम शौहर का। खुश हुई, पहली बार शौहर के मरने के बाद पहली बार कोई न्यूज मिली कि जन्नत का सबसे खूबसूरत महल। अच्छा, लेकिन रीजन पूछ लिया कि मेरे शौहर को यह महल क्यों मिला? ताकि जो उसका नेकी हो मैं भी करूं। का वो राह खुदा में चैरिटी बहुत करता, हम तो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि खुमस भी अगर देना है तो 20% दें 21 न होने पर। क्यों भाई, हमारा पैसा क्यों इमाम के पास चला जाए? इमाम का पैसा हमारे पास आना चाहिए, जो देते हैं, जो देते ही नहीं उनकी बात तो छोड़ी। और ये कि यहां तो कोई परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं है, राय खुदा में दिया जा रहा, ये नेकी, दिल को सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई यही नेकी तो मैं भी कर रही हूं। और अल्लाह आदिल है, जब एक नेकी से उसको रिवार्ड मिल रहा है तो वही नेकी मैं कर रही हूं। अच्छा, अब जरा लेफ्ट साइड पे देखो, वहां गई, ओहो इतना अंधेरा, ऐसी डार्कनेस। लोग कहते भी हैं कि मौलाना पहले आप जहन्नम का अज़ाब बहुत डिटेल से बताते थे, अब नहीं बताते। ये जो हॉरर मूवीज है ना, इन्होंने हर चीज का मजा खत्म कर दिया। तो खैर, इतना अंधेरा, इतनी डार्कनेस, और फिर उसके अंदर नजर भी आ रहा है कि आग जल रही। अंधेरे में कैसे नजर आ रहा है? आग जल रही, पूरे पूरे कुएं और वेल आग से भरे हुए, और उसमें गुनाहगारों को अजाब दिया जा रहा। आज की मजलिस में अजाब का बयान की, इस अजाब से हमको बचाने वाले का नाम ही तो अब्बास से अलमदार है। तो एक मरतबा ये देखा कि अजाब दिया जा रहा, और किस्म किस्म का, खाली आग नहीं, सांप भी है, बिच्छू भी है, सब कुछ। और देखा कि जो गुनाहगारों को अजाब दिया जा रहा है, एक लाइन से बिठा के, बिठाना नहीं उल्टा लटकाया गया है कुएं में। उसके अंदर देखा कि एक जगह खाली, भाई ये किसके लिए? का ये तेरे लिए, तेरा वेट किया जा रहा, तू आए और तुझे अजाब दिया जा रहा। अब खुद भी समझती है कि मैं मासूमा तो नहीं हूं, कोई गुनाह होता होगा। पूछा रीजन क्या, मैंने क्या ऐसी गलती कर ली? नमाज में पढ़ू, रोजा में रखूं, हिजाब में करूं, मिस गैदरिंग को मैं अवॉइड करूं, म्यूजिक मेरे घर में नहीं, रिस्क हराम मेरे घर में नहीं, शराब मेरे घर में नहीं। कहा कि जो तू राह खुदा में चैरिटी करती है, ये उसकी पनिशमेंट। और आंख खुल गई, ख्वाब अपने कंट्रोल में तो है नहीं कि आप उसको कंटिन्यू करें, आंख खुल गई। अब ये अजीब हालत, कभी दिल कहता है कि ये शैतान का ख्वाब, मुझे चैरिटी से रोकना चाहता था इसलिए ये ख्वाब दिखाया। हदीस है ना, एक ख्वाब शैतान की तरफ से आता, एक ख्वाब रहमान अल्लाह की तरफ से आता। कभी दिल कहता है ये शैतान वाला ख्वाब, कभी दिल कहता है कि नहीं, जिस तरह से मैंने ख्वाब देखा ये तो बिल्कुल ट्रू सपना। ख्वाब यानी सपना, ख्वाब यानी ड्रीम, ख्वाब माने ख्वाब, हम तो उर्दू में बोलेंगे। तो खुलासा ये है कि दिल कहता है ये सच्चा। अब सच और गलत का फैसला कैसे हो? अब वो गैबत का जमाना तो था नहीं, बनी इसराइल के नबी थे, अगली सुबह उनके पास गए, कहा ये मैंने देखा, सिर्फ इतना बताइए कि सही ख्वाब है कि गलत ख्वाब, ट्रू और फॉल्स, من اللہ و من الشیطان, اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی طرف. نبی نے کہا سچا خواب ہے, یہی ہونے والا. گھبرا کے یہ کہا کہ ریزن ایک ہی, چیریٹی ایک ہی نیکی, شوہر کرے تو جنت ملے اور اتنا خوبصورت محل, وہی نیکی بیوی کرے تو جہنم ملے. واہ, کوئی ریزن ہے؟ کہا ہاں, شوہر اپنے مال میں سے خیرات کرتا تھا اور چیریٹی کرتا. تو یا نبی خدا میں بھی اپنے مال سے کرتی تھی. کہا نہیں, جب تک شوہر زندہ تھا اور اس کی پرمیشن تھی, اس کا مال تیرا مال تھا. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 12.5%, آٹھواں حصہ. اونلی 1/8 بیوی کا حق ہے, باقی 7/8 اولاد کا حق. اور اولاد بھی اگر نابالغ ہو تو وہ تو پرمیشن دے بھی نہیں سکتی. بھائی اگر نابالغ ہے, 10 سال 11 سال کا بچہ, سمجھدار بھی ہے نابالغ بھی, ماں سے کہے اچھا میں اجازت دیتا ہوں, اس کی تو پرمیشن بھی نہیں چلے گی. مراجع کرام کا فتویٰ ہے نا, بلکہ باقاعدہ آغا گل پائیگانی نے اپنی بک میں چھاپ دیا, لیکن سب کا فتویٰ. کسی نے سوال کیا کہ میرے ایک رشتے دار بہت بیمار تھے, میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے, آفس سے آ رہا تھا, ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی, میں نے ان کو دیکھا, وزٹ کیا, بیمار کو وزٹ کرنا, اور ٹائم تو بہت تھا, لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھ لو, پرمیشن تو نماز کے لیے بھی چاہیے اور وضو کے لیے بھی. اور ابھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ ایک دم گھر میں رونے کی آواز آئی اور پتا چلا وہ صاحب مر گئے, اور ان کے وارثوں میں ایک نابالغ بچہ بھی تھا. یہی تو جواب ہے فتوے کا کہ نماز غلط ہو گئی, ٹوٹ گئی نماز. وائے؟ کہا کہ اب مالک آنر چینج ہو گیا. تم نے جس سے شروع میں پرمیشن لی تھی, اس کا گھر تھا, اس نے اجازت دی, لیکن 2 رکعت کے بعد جب آنر چینج ہو گیا, اور ون آف دا آنر, کیونکہ میراث میں تو ایک آدمی تو نہیں ہو سکتا, اونلی ون آف دیم بھی اگر نابالغ, وہ خود بھی پرمیشن نہیں دے سکتا, اس کی ماں بھی اس کے بہاف پہ پرمیشن نہیں دے سکتی. ایسی جگہ تمہاری نماز ہے کہ جہاں پہ نئے مالک کی رضا نہیں, منع نہیں کیا لیکن نابالغ رضا دے نہیں سکتا. کہا کہ ہاں اگر نماز قضا ہو رہی ہوتی تو پھر حکم اسلام کا ہے کہ قضا نہ ہونے دو, کمپلیٹ کرو یہ نماز دوبارہ پڑھنا, اتنی سی بات. اور یہاں تو تیرے شوہر کے مرنے کے بعد میجر پورشن 87.5% تیرے بیٹے کا جو نابالغ تھا, اس میں سے خیرات کرنا ایسا ہے جیسے چوری کے مال میں سے, جیسے کسی کے غصبی, جیسے غصبی مال سے. اس کا انٹینشن برا نہیں, لیکن وہی بات جو کل کی مجلس میں صرف بزنس کے لیے آئی تھی, یہ بزنس نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا ہر مسئلہ. الفقہ ثم المتجر, بزنس سے پہلے حلال و حرام کے مسئلے سیکھو, ورنہ تمہارا انٹینشن نہیں ہوگا پھر بھی حرام آ جائے گا. اور خالی بزنس نہیں, دنیا کا ہر کام. ہمارے یہاں اتنی گڑبڑ میراث میں ہوتی, شوہر کا حصہ, بیوی بیوی کا حصہ, شوہر ساس کا حصہ ان کو نہیں ملا, نابالغ بچوں کا حصہ ان کو نہیں ملا. اور تذکرہ اس عباس علمدار کا, جسے ہر چیز اپنے بابا سے میراث میں ملی, تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو حق میراث کیسے ادا ہوتا. مراجع کرام کہتے ہیں کہ نارمل حالات میں وصیت کرنا ہائیلی ریکمینڈڈ عمل ہے, سنت. لیکن اگر ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ وصیت نہ کرنے کی وجہ سے میراث میں گڑبڑ ہو جائے, اب ہمارے یہاں پاکستان میں آپ وصیت نہ بھی کریں اور کورٹ میں جا کے کہیں میں شریعت کے حساب سے تقسیم چاہتا ہوں, گورنمنٹ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کرے, بیوی کا اتنا, بیٹے کا اتنا, بیٹی کا اتنا, جہاں پہ ایسا نہیں وہاں پہ وصیت واجب ہو جاتی. خیر, تو یہ تو بات بہت لمبی ہو گئی. آج آپ علامہ عباس کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دل چاہ رہا ہوں. زہرا کا تذکر آئے گا تو کبھی میراث کے گناہ پہ بھی غور کیجئے کہ ایسا تو نہیں جس وجہ سے زہرا ان ظالموں پہ لعنت بھیج رہی ہیں, ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور جب کبھی عباس کا تذکر آئے گا تب بھی یہ سوچ لیجئے کہ عباس کو جو جو میراث ملی, عباس نے اس طرح سے اس کا حق ادا کیا کہ اگر ہمارے پاس عقیدہ نہ ہوتا کہ علی عباس سے افضل ہیں, अगर यह अकीदा हमारा न होता तो शायद अब्बास और अली के दरमियान हम कोई फर्क भी नहीं कर सकते, हमें अब्बास अली लगते और अली अब्बास लगते। वह अकीदा हमारा कह रहा, जैसे मैं अक्सर जनाब जैनब के लिए कहता हूं कि हमारा अकीदा कि फातिमा फातिमा है, जैनब उनके बाद, वरना सीरत के एतबार से हमें फर्क नहीं लगता। जैनब की सीरत को देख के ही लगता है जैनब नहीं है, फातिमा है, फातिमा जैनब। लेकिन बहरहाल 14 मासूमीन, उनका तो रुतबा ही बुलंद। अब्बास ने हर तरह से हक अदा किया अपने बाप का, सही मानों में ट्रू वारिस जिसे कहते हैं। और अली ने अब्बास की तमन्ना ही इसीलिए की थी कि मुझे एक वारिस चाहिए जो करबला में मेरे काम आए, लफ्जी वो ये था। अच्छा, एक छोटी सी बात अर्ज करते हुए, बहुत तफसीली आज मसाइब में नहीं पढ़ पाऊंगा, जनाब अब्बास के कुछ मसाइब आ जाएंगे, कुछ मसाइब इंशाल्लाह हाजिरी की मजलिस में आएंगे। देखिए, बड़ी तमन्ना है अली को अब्बास के लिए, बाकायदा अपने बड़े भाई को बुला के ये बात मशवरा लिया, मशवरा किया। अच्छा, किसी आदमी को औलाद की तमन्ना कब होती है, जरा सोचिए। नंबर एक, औलाद न हो। यहां तो अब्बास से पहले अली के कई औलादें हो चुकी, या औलाद हो मगर बेटियां हो। घर के इस्लाम में तो कोई हरज नहीं है, रसूलुल्लाह के पास बेटी ही थी, लेकिन चले हमारे कल्चर और माहौल में बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तमन्ना होती। अली के पास अब्बास से पहले जो औलाद है उसमें बेटे ज्यादा हैं और कई बेटे हैं। तीसरा यह है कि बेटा भी है लेकिन अब तो द स्टैंडर्ड नहीं है, जैसा बाप चाह रहा है ना वैसा नहीं। अली का तो पहला ही बेटा हसन है, अली का तो दूसरा ही बेटा हुसैन। इससे बेहतर बेटे कायनात में किसी ना नबी को मिले, ना वली को मिले, ना इमाम को मिले। भाई मौला अली अब्बास क्यों चाहते हैं? जो ऑलरेडी अली की औलाद है उसमें नऊज़ु बिल्लाह क्या कमी है? औलाद भी है, बेटे भी हैं, और बेटे भी किरदार की इतनी अजीम मंजिल पर हैं। या ये कि कभी एक ही बेटा है अकलौता, तो ख्वाहिश होती है कि नहीं एक से ज्यादा बेटे। यहां तो हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, मोहम्मद हनफिया भी हैं, बेटे भी कई। जरा अंदाजा करें, दुनिया की कोई चीज भी अगर सिंगल हो उसकी एक वैल्यू होती है, मसलन एक मोती डायमंड, और अगर उसकी जोड़ी बन जाए पेयर तो कीमत डबल नहीं होती, कीमत 10 टाइम्स हो जाती है। यहां अली के पास हसन अकेले नहीं है, हुसैन अकेले नहीं है, हसन हुसैन दोनों मिल गए हैं। कायनात की सारी औलादें उसके सामने कुछ नहीं। अब्बास उसका नाम है कि हसन के होते हुए भी, हुसैन के होते हुए भी, सैयदा शबाब अहले जन्ना के होते हुए भी अली ने अगर कोई दुआ मांगी और तमन्ना की तो अब्बास के लिए की। हुसैन के होते हुए अब्बास को मांगा गया, अंदाजा करें। और बड़े अजीब अंदाज से, अब ये दो रिवायतें ऐसी हैं जो शायद इस तरह से हिस्ट्री में ना हो, लेकिन मेरे मरहूम उस्ताद जो ऑरेटरी में मेरे उस्ताद, वो ये बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। पहली रिवायत जिसका शुरू का हिस्सा तो आपका भी सुना हुआ, अली ने अपने बड़े भाई अकील को बुलाया। अकील जो है वो अरब की फैमिलीज और फैमिली ट्री इसके एक्सपर्ट थे, और कहा कि मैं ये चाहता हूं, वही लफ्ज आ गया जो आज की मजलिस का उन्वान था, कि मुझे एक ऐसा वारिस मुझे मिले जो करबला में वही रोल अंजाम दे जो मैं रसूलुल्लाह के साथ कर चुका हूं। वारिस, मीरास, आप अरब की सारी फैमिलीज को जानते हैं, बताइए कौन सी फैमिली ऐसी। अच्छा, बाज़ उलमा कहते हैं कि क्या मौला अली को अकील से भी कम नॉलेज, क्या अकील से ये पूछ रहे हैं? नहीं, इसका भी एक जवाब है, लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया, असल में तो आज मातम की रात है, अलम उठाने की रात है, मेरी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो आगे किसी मजलिस में ये सवाल, लेकिन बहरहाल इसका एक बहुत ही वैलिड रीजन है। अकील ने सुना, कहा कि अली कोई आम आदमी आके मुझसे एडवाइस देता तो जवाब दे देता, मगर तुमने कहा कि ऐसा खानदान चाहिए जहां मेरा वारिस, मुझे पूरी रात सोचना पड़ेगा सारे कबीलों के बारे में। अगले दिन आ गए, कहा कि आए अली नाम तो कल भी मेरे जहन में आ गया था लेकिन मैंने मजीद सोचा, कबीला बनी कलाब इससे बेहतर कोई कबीला नहीं। अरब में चार कबीले बहुत मशहूर थे, चारों की अपनी अपनी एक खसूसियत, शराफत बनी हाशिम, खूबसूरती कबीला बनू सकीम जिससे उम्मे लैला का ताल्लुक, पॉलिटिक्स खेलना बनू उमैया, और बहादुरी शिजात। अरब के लोग अपनी तलवार पे इस कबीले का नाम लिखते, कहा इससे बेहतर कोई कबीला नहीं। अली ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, 20 साल बड़े हैं, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता, औलाद के रिश्ते तो वालिदैन तय करते हैं, मेरी जानिब से आप मेरा रिश्ता लेके जाइए। मदीने से 14 मील 15 मील जहां नमाज कसर हो जाती है वहां पर यह कबीला रहता था। अकील गए, अरब में जब कोई मेहमान आता है तो कोई स्कैनिंग 3 दिन तक नहीं होती, कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्यों आए, कुछ 3 दिन मेहमान। चौथे दिन सरदार है कबीला ने पूछा कि आप हैं कौन, अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपना पर्पस। कहा कि तुमने अबू तालिब का नाम सुना? सरदार कबीला चौंक उठा, कहा कि आपने भी क्या सवाल कर लिया, जिसने रसूलुल्लाह का नाम सुना है कैसे मुमकिन है कि अबू तालिब का नाम ना सुना हो, लेकिन इस सवाल का मकसद क्या, मैं अबू तालिब का बड़ा बेटा हूं। उस वक्त अकेली सबसे बड़े, एक मर्तबा घबरा के खड़ा हो गया, आपने अपना इंट्रोडक्शन पहले क्यों ना करा है? आए अमीर अरब के बेटे, आए सरदार मक्का के बेटे, आए मुहाफिज रसूल के बेटे, आए बैजतुल बलद के बेटे, अबू तालिब का बेटा मेरे घर में आए और मैं इस तरह आम मेहमान की तरह ट्रीट करूं, आका बड़ी गलती हो गई। आए क्यों है? कहा कि हमारे खानदान को भी जानता होगा। सरदार कबीला कहने लगा कि कौन ऐसा अकल का अंधा है जो आपके खानदान को नहीं जानता? कहा मैं अपने खानदान का रिश्ता तेरे खानदान से जोड़ना और मिलाना चाहता। कहा कि आपके खानदान में कौन है जिसका रिश्ता लाए? कहा मेरा भाई अली। बस खुशी के मारे कदम जमीन पे नहीं जम रहे सरदार कबीला के, कहा कि मेरी एक बेटी है फातिमा, और बाकी कबीले को छोड़िए हाजिर है। कहा इस तरह नहीं, शरीयत शरीयत, पहले जाके लड़की से पूछना पड़ेगा जब तक कि उसकी रिजा ना हो। सरदार अपने घर में आया, सरदार है लेकिन बेटियां वालिदैन के लिए एक मसला तो होती, तो उसकी बीवी अक्सर परेशान रहती थी कि हमारी बच्ची शादी के काबिल हो गई है, कोई रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। सरदार ने कहा सुनती हो सुनती हो, रोजाना मुझसे कहती थी, डिस्कस करती थी ना कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, आज बहुत अच्छा रिश्ता आया। वो मोमिना उम्मुल बनीन की मां यह समझी कि किसी कबीले के सरदार का रिश्ता होगा, किसी छोटे मोटे बादशाह का रिश्ता होगा। कहा बहुत कुछ नजर आ रहे, बताओ तो सही किसका रिश्ता आया? जवाब दिया ये रिश्ता इस तरह नहीं बताऊंगा, पहले वुजू करके 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ फिर बताऊंगा किसका रिश्ता आया। मोमिना ने जल्दी से नमाज पढ़ी, किसका रिश्ता? कहा अबू तालिब के बेटे अली का रिश्ता। यकीन नहीं आ रहा, कहीं हो ही नहीं सकता, तुम्हें धोखा हुआ होगा, मोहम्मद का दामाद हमारा दामाद बने। कहा कि नहीं धोखा नहीं, खुद अली के बड़े भाई अकील आए। मोमिना कहती है तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से हाँ कह दो, इरादा ना बदल जाए। कहा वो कहते हैं कि जब तक के लड़की से रिजा नहीं ली जाएगी। अब उम्मुल बनीन की जो फ्रेंड्स या सहेलियां हैं बुलाई गई और कहा कि जाके पूछ किया एक रिश्ता आया। उम्मुल बनीन ने जवाब दिया कि मेरे रिश्ते का इख्तियार मेरे पेरेंट्स का, लेकिन कल रात को मैंने ख्वाब देखा था, मैंने देखा था कोई बीबी आती है अपने हाथ से मुझे दुल्हन बनाती है, दुल्हन बनाने के बाद मेरी पेशानी को किस करती है और बोसा लेती है, और एक जुमला कहती है तू मेरे बेटे की मां बनने वाली है। मैंने पूछा बीवी आप हैं कौन, कहा मैं रसूल की बेटी फातिमा जहरा हूं। यह ख्वाब मैंने देखा, मेरी मां को बता देना यह ख्वाब। फातिमा ने अभी से उम्मुल बनीन को यह कह के दुल्हन बना दी, ये मेरे बेटे की मां बनने वाली। गर्ज यह कि शादी हुई, उम्मुल बनीन अपने कबीले से रुख्सत होकर महल्ला बनी हाशिम में आई। चारों तरफ पहरा लग गया, अली का हरम आया है, अली का नामूस आया, और फिर उम्मुल बनीन हुजराए फातिमा में दाखिल हूं। पहले तो जो दरवाजा था वही चौखट को बोसा दिया और बैठ गए। हसन हुसैन आए, अम्मा आप यहां क्या बैठी है, ये आपकी जगह नहीं है, हुजरे में तशरीफ लाई। ज़ैनब कुलसूम आई, अम्मा आप यहां कहां बैठ गई, और हर हर जुमले पे फातिमा किलाबिया जो उम्मुल बनीन बाद में कहलाई, तड़प के कहती है शहजादों मुझे मां ना कहना, शहजादियों मुझे मां ना कहना, तुम्हारी मां तो फातिमा जहरा थी, मैं तो तुम्हारी कनीज, तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं। और वाकान ऐसी खिदमत की, उम्मुल बनीन ने खिदमत का हक अदा किया, हसनैन ने अकीदत और एहतराम का हक अदा किया। एक साल गुजर गया, शाबान का महीना आया, मेरा मौला मस्जिद में मसरूफ है इबादत, घर से पैगाम आया, या अली मुबारक हो, अल्लाह ने आपको उम्मुल बनीन के जरिए बेटा दिया। मौला ने शुक्राने की नमाज पढ़ी और उसके बाद उम्मुल बनीन के हुजरे में आया। वाकई देखा उम्मुल बनीन अपने बिस्तर पे लेटी और बराबर में ये नौ मौलूद न्यू बॉर्न बच्चा। मां कितना खुश होती है अगर उसकी यहां औलाद और वो भी पहली औलाद लड़का हो। लेकिन मौला ने देखा उम्मुल बनीन कुछ परेशान नजर आ रही, घबरा के कहा उम्मुल बनीन क्या बेटे की पैदाइश पर खुशी नहीं? कहा मौला खुश तो हूं लेकिन एक बड़ी परेशानी भी है, जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली। अब मां परेशान है कि बच्चे आंखें क्यों नहीं खोल रहा, और अली मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अली को अपनी मां की कंप्लेन याद आ गई। जब खाने काबा में अली पैदा हुए थे और फातिमा बिनते असद तीन दिन बाद अली को गोद में लेके बाहर आई थी और पैगंबर ने इस्तकबाल किया था, तो सेम यही कंप्लेन बिनते असद ने रसूल से की कि अरे अल्लाह के रसूल ये जब से पैदा हुआ इसने आंखें नहीं खोली है। अली मुस्कुराए, अली को याद आ गया कि ये तो पहले भी हिस्ट्री में मेरे बारे में माने का। उम्मुल बनीन से कहा उम्मुल बनीन घबराओ नहीं, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल, अभी आंखें खोलता, अभी आंखें खोलता। बच्चे को गोद में ले चुके, एक कान में अजान एक कान में इकामत। कनीज से कहा कोई जाके मेरे हुसैन को बुला के ले आ। उम्मुल बनीन घबराओ नहीं, अभी आंखें खोलता है, हुसैन को आने दो। हुसैन आए, बाबा हुक्म। अली ने बच्चा हुसैन की गोद में दिया, कहा हुसैन बाप की तरफ से यह तोहफा अभी से कबूल करो। बच्चा हुसैन की गोद में गया, इधर हुसैन की गोद में गया, आंखें खोल के सबसे पहले हुसैन के चेहरे की जियारत। अब वो जुमला याद कीजिएगा जब असरे आशूर अब्बास ने कहा था आखिरी जियारत भी आपकी करना चाहता हूं, शायद परसों की मजलिस में वो पूरी रिवायत पढ़ू, आज तो आंखें खोली, पहली जियारत हुसैन के चेहरे की थी। अलबत्ता बाज़ ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि बच्चा जब हुसैन की गोद में गया तो आंखें बाद में खोली, पहले नन्ने नन्ने हाथ फैला दिए, शायद कह रहा हो आका हाथों का नजराना तो अभी से ले लीजिए। अली ने फिर बच्चे को अपनी गोद में लिया, चेहरा देखा, और एक मर्तबा का बिल्कुल वैसा ही मेरा वारिस है जो तमन्ना लेके मैंने ये शादी की थी, ऐसा ही मुझे चाहिए था, और अल्लाह का रसूल मुझे पहले से इसके बारे में खबर दे गया है और कह गया है कि इसका नाम अब्बास रखना। अच्छा, ज़ैनब कमरे में मां की खिदमत कर रही हैं, उम्मुल बनीन ज़ैनब खिदमत कर रही, अभी तक ज़ैनब सारे वाकयात सुनती रही। जैसे ही सुना कि इसका नाम अब्बास है, ज़ैनब आगे बढ़ के आई, एक मर्तबा बाप से रिकन्फर्म कराया, बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास। कहा हाँ ज़ैनब बेटी इसी का नाम अब्बास। तो कहा बाबा एक लम्हे के लिए जरा इसे मेरी गोद में भी दे दीजिए। अली मुस्कुरा दिया, अली तो सब जानते हैं, बच्चे को ज़ैनब की गोद में दे दिया। 30 साल बड़ी बहन है, ज़ैनब ने गोद में अब्बास को लिया, कानों पे मुंह रख के कुछ कहने लगी। अली मुस्कुराए, ज़ैनब बेटी ये जल्दी किस बात की है, ये अब्बास तेरे पास ही रहेगा, तू ही अब्बास को पालेगी, जिंदगी बड़ी है बातें करने के लिए, अभी से बातें शुरू। अजीब जुमला कहा ज़ैनब ने, ये मेरे उस्ताद पढ़ते थे रिवायत, खत्म हो रही है रिवायत। घबरा गई ज़ैनब, बाबा मैं अपने भाई से कोई बात नहीं कर रही, अभी ये बातों का वक्त नहीं आया, ये तो एक अमानत है 15 साल पुरानी जो आज इसे अदा कर रही। अली ने मुस्कुरा के कहा, बेटी ज़ैनब कौन सी अमानत? कहा, जब अम्मा फातिमा दुनिया से जा रही थी, मुझे बुला के कहा था, ज़ैनब बेटी तेरा एक भाई अब्बास पैदा होगा, जब अब्बास पैदा हो तो अब्बास से इतना कहना, अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। मैंने अम्मा का सलाम अब्बास को पहुंचाया। अब्बास तुम कितने खुशकिस्मत हो, अली ने तुम्हें याद किया, फातिमा ने तुम्हें याद किया, दुनिया से जाते जाते पहलुए शिकस्ता वाली फातिमा, टूटी हुई पसलियों वाली फातिमा अब्बास को सलाम कहलवा रही है। और वाकान वाकान करबला का अजीब मुजाहिद है अब्बास, अजीब मुजाहिद है। अहले बैत हैं कौन? अहले बैत हैं कायनात के मुश्किल कुशा। सही कहा ना मैंने, अहले बैत हैं कायनात के मुश्किल कुशा। कायनात में किसी को मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, किसको याद करेगा? अहले बैत को। खुद अहले बैत का भी कोई मुश्किल कुशा है? हाँ, और अब्बास है अहले बैत के मुश्किल कुशा। अहले बैत को अगर कोई परेशानी हो, हमें परेशानी हो, अहले बैत को याद करेंगे। अहले बैत को परेशानी हो, अब्बास को याद किया जाए। ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, कायनात की तारीख में आपको ऐसा जर्नल कोई नहीं मिलेगा जो 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर से लड़ाए और सुबह से शाम हो जाए। 72 के क्या इनका कंपेरिजन है 30,000, आधे घंटे की जंग। ये अब्बास शबी है, अली या मुर्तजा है वो अब्बास। मगर जैसा मैंने कहा, आज मेरा मौजू है मसाइब में, अब्बास अहले बैत के मुश्किल कुशा। अहले बैत को कोई परेशानी होती है, मां के दिल का सहारा अब्बास, बच्चों की तसल्ली अब्बास है, सैदानियों के दिल की ढारस अब्बास है, ज़ैनब कुबरा की मुश्किल कुशा अब्बास है। अरे और तो और, आका हुसैन जो उस वक्त के इमाम जमाना थे, उनका सहारा अब्बास है। बहुत जल्दी जल्दी इस जुमले की वजाहत कर दूं, ये मसाइब भी हैं, मजलिस का इख्तिताम भी। उम्मुल बनीन, अब्बास को पाला है ना, इतना भरोसा। बादे वाकया करबला, बकरी में उस कब्र पे जाके गिरी के जो फातिमा की कब्र कहलाती। और एक जुमला पहला तो ये कहा कि शहजादी मैं आपको आपके बेटे अब्बास का पुरसा देने आई। मदीने में हर वक्त बाहर के लोग रहते हैं, उमरा करने वाले, जियारत करने वाले। किसी ने कहा, ये कौन औरत जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि अब्बास फातिमा का बेटा नहीं, उम्मुल बनीन का बेटा। मदीने वालों ने कहा, अरे ये खुद उम्मुल बनीन है, क्योंकि फातिमा ने हमेशा कहा था अब्बास मेरा लाल। मगर उम्मुल बनीन का दूसरा जुमला, कहा बेटा अब्बास, सर उठाया करबला को देखा, करबला, बेटा अब्बास लोग मुझे आके तेरा पुरसा देते। मैं सबकी बातें सुनती हूं, किसी की बात पे मुझे यकीन नहीं आता। मैं कहती हूं मेरा अब्बास जिंदा, मारा नहीं गया, ये पुरसा दे रहे हैं किसी गलतफहमी में दे रहे, क्योंकि मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे पाला, मुझे पता है कि अब्बास शेर खुदा का वो शेर है जिसे कोई नहीं मार सकता। इतना भरोसा है मां को, लेकिन बेटा फिर मैं यकीन कर लेती हूं मेरा अब्बास मारा गया। कब यकीन करती हूं? जब सुनती हूं मेरे इमाम जमाना आबिद बीमार की कमर पे कोड़े लगे, जब सुनती हूं नन्नी सकीना के गालों पे तमाचे लगे, नहीं नहीं, जब सुनती हूं मेरी शहजादी ज़ैनब की चादर छिन गई थी, मेरा अब्बास जिंदा होता चादर ज़ैनब पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। मां कब यकीन करती है, वरना कितना भरोसा। बच्चों का सहारा अब्बास है। देखिए 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, आप लोग यहां यौमुल अतश मनाएंगे 8 को, बच्चे आशूर की से पहर तक कहते रहे अल अतश अल अतश अल अतश, उसके बाद बच्चे खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? क्या पानी मिल गया? नहीं, ये बच्चे तो कूफे में भी प्यासे थे, उम्मे हबीबा के घर के सामने सकीना ने पानी मांगा ना, ये बच्चे तो राह शाम में भी प्यासे थे, सकीना ने शिमर से पानी मांगा ना, ये बच्चे तो जिंदान शाम में भी प्यासे थे, जैनब को बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी। एक सवाल यह है कि 3 दिन में तो बच्चे पानी मांग रहे हैं और उसके बाद जब प्यास और बढ़ गई तो खामोश हो गए? नहीं, जब पानी मांगा तब भी पानी के लिए नहीं मांगा, जब खामोश हुए तब भी इसलिए नहीं कि पानी मिल गया। जब तक अब्बास जिंदा था बच्चों को यकीन था पानी लाने वाला मौजूद है, इसलिए पानी मांग रहे थे। जब फरात के किनारे अब्बास का वो आलम ठंडा हुआ जिसे आप उठाएंगे थोड़ी देर बाद, अब किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा, पानी क्यों कैसे मांगे, पानी लाने वाला ना रहा। आका हुसैन का सहारा है अब्बास। अब ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, हुसैन इमाम वक्त है, हुसैन इमाम जमाना, हुसैन अब्बास के भी सरदार हैं, लेकिन आका हुसैन का सहारा है अब्बास। अरब के शायर ने आका अब्बास का एक मरसिया कहा, लेकिन जैसे ही अपना मरसिया दोबारा पढ़ा, पहला शेर था वो घबरा गया, ये गलत, मैंने आका अब्बास की तारीफ की है मगर आका हुसैन की तौहीन की है। अल यौम अस्तजारा बिहिल खुदा, आशूर का दिन वो था कि हुसैन भी अब्बास की पनाह में थे। का ये तो आका हुसैन की तौहीन है, अब्बास सब कुछ है लेकिन हुसैन तो नहीं है ना। मरसिया बंद कर दिया। पहली शब जुमाई ख्वाब में देखा मैं करबला में आका हुसैन के हरम के सामने खड़ा, बड़े आका का रोजा सामने, दौड़ के गया, जरी की जियारत तो की लेकिन घबरा गया। आज शब जुमा, सुना है कि शब जुमा तमाम अंबिया जियारत को आते हैं, तमाम अहमा जियारत को आते हैं, तमाम मलाइका, ये तो पूरा हरम खाली है, कोई नहीं है हरम में, घबरा गया। जो खुद्दाम से पूछा यह आका हुसैन ही की जरी है, कहा कि हाँ, तो ये हरम खाली क्यों है, कहां है वो सब लोग, का खाली इसलिए कि इस वक्त हुसैन खुद अपने हरम में नहीं, वो बाहर गए हैं तो जाहिर भी बाहर, तो आका कहां गए हैं, कहा अपने छोटे भाई अब्बास की जियारत के लिए गए, हुसैन अब्बास की जियारत के लिए गए। अब ये शायर दौड़ा सामने ही तो हजरत अब्बास का रोजा, वहां दाखिल, वहां बड़ा मजमा खचाखच भरा हुआ है रोजा, लेकिन खासियत ये कितना ही मजमा हो जाहिर को जरी तक जाने का मौका मिल जाता, वहां पहुंचा आका अब्बास की जियारत पड़ रहा कि चकरा गया, हैरान हो गया, घबरा गया, मेरे आगे ही हुसैन खड़े, अब्बास के सराहाने खड़े होके वही जियारत पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अल मुती लिल्लाह वल रसूल। और जैसे ही आका ने जियारत खत्म की, इस शायर का शेर जरी के सराहाने पड़ा, अल यौम अस्तजारा बिहिल हुदा, आशूर के दिन हुसैन अब्बास की पनाह में थे, और फिर इस शायर को मुड़के देखा, तूने मेरे भाई का मरसिया क्यों बंद कर दिया, का मौला इसमें आपकी तौहीन है, का तौहीन नहीं है, तूने हकीकत बयान की, जब तक अब्बास जिंदा था हुसैन को भी सहारा था, हुसैन के दिल की धड़क। शायर के वाकये को हुसैन के जुमले से मिला दूं, कोई कहेगा ये तो शायर का वाकया, हुसैन का जुमला, करबला में इतने शहीद हुए, हुसैन ने जुमला नहीं कहा, अब्बास का सलाम आया, हुसैन ने कमर पकड़ ली, अल आन अल आन इन कसरा जहरी, अब्बास तुम नहीं मरे, हुसैन की कमर टूट गई, अब्बास हुसैन का सहारा। और बस आखिरी जुमले, और हमारे बच्चे तैयार हो जाएं, जवान तैयार हो जाएं, आलम उठाना, आखिरी जुमले, मां का सहारा अब्बास, बच्चों को यकीन अब्बास पर, आका हुसैन की कमर अब्बास। अब बड़ी अजीब मंजिल आती है, सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा, बस ये आखिरी जुमले, शब आशूर गुजर रही, मैंने 2 दिन पढ़ा मर्दों का इम्तिहान औरतों का इम्तिहान, अब्बास अपने खेमे में कल के जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जब आप खेमा गाह जाते हैं करबला में, पहले ही खेमा अब्बास का, तलवार की सफाई है, एक मर्तबा देखा ज़ैनब कुबरा मेरे खेमे में आई, अल्लाह, घबरा के अब्बास खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा, शहजादी गुलामों के घर में आकाजादियां नहीं आती हैं, मुझे बुलाया होता। जैनब ने कहा, अब्बास तुमने क्या कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, बहन भाई के घर में खेमे में आई है। अब्बास ने कहा, शहजादी जहमत क्यों की, ये मेरे उस्ताद का जुमला। कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बीबियां मेरे पास आई थी और सबने आकर कहा था, शहजादी जैनब हम कल के पूरे इम्तिहान के लिए तैयार, पूरा इम्तिहान, बस हमें एक ही परेशानी है, हमारी चादर कल महफूज रहेगी कि नहीं। बेटे जाएं, लाशें आएं, भूख प्यास कोड़े हर चीज सब तैयार है, बस हिजाब, कल हमारी चादर महफूज रहेगी कि नहीं। अब्बास, सबने आकर कहा कि ऐ शहजादी, आप मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। अब्बास, भैया मैंने ना हां कहा ना ना कहा, मैं सीधा तेरे पास आई, मेरा जवाब तेरे जवाब पर, बता के मैं इन बीबियों से क्या कहूं। बस एक मर्तबा अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, शहजादी जब तक आपका गुलाम जिंदा है, एक एक बीबी की चादर महफूज है। और जैनब को यकीन है कि अब्बास को तो कोई मार ही नहीं सकता। वापिस गई जैनब, सहने खेमा में सारी बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों, मुश्किल कुशा अली की बेटी तुमसे वादा करती कि कल तुम्हारी चादर सलामत होगी, ये शबे आशूर वादा किया, और असरे आशूर जैनब ने वादा वापस ले लिया। कब वादा वापस लिया, अब्बास चले फुरात की जानिब, बच्चे अब्बास को तो नहीं देख रहे हैं, लश्कर यजीद आ गया, अब्बास का अलम नजर आ रहा, अलम नजर आ रहा, अब्बास अलम लेके जा रहे हैं, दरिया तक पहुंचे, अलम लेके वापस आ रहे हैं, बच्चों की निगाहें अलम पर है, अलम आ रहा, अलम आ रहा, यानी पानी आ रहा, यानी चचा आ रहा, सब बच्चे तैयार हैं। एक मर्तबा देखा अलम थोड़ा सा दाईं तरफ झुका, बच्चे घबरा गए, खुदा खैर करे, फिर अलम संभल गया, फिर देखा कि अलम थोड़ा बाईं तरफ झुका, आगे बढ़ रहा है लेकिन बाईं तरफ झुका, बच्चे घबरा गए, अल्लाह खैर करे, फिर अलम संभल गया और आगे बढ़ा। एक मर्तबा बच्चों ने देखा अलम जमीने करबला की जानिब झुका, जमीने करबला पे जाके ये अलम ठंडा हुआ। आका हुसैन के कानों में अब्बास का आखिरी सलाम आया, हुसैन ने कमर पकड़ के कहा, अब्बास अलान इन कसरा जाहरी, फिर हुसैन चले, बाकी मसाइब परसों, हुसैन चले, फुरात के किनारे गए, अलम उठाया, अलम लेके सहने खेमा में आ गए, हुसैन के हाथ में अलम है, सहने खेमा में आए। एक मर्तबा कहा, जैनब जैनब आओ आओ, अलम संभालो, अब मैं जा रहा हूं। एक बार जैनब ने अलम लिया, आवाज दी, ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रबाब, ऐ लैला, ऐ कुबरा, जरा यहां आना। सारी बीवियां आ गई, शहजादी क्या बात है, कहा कल रात तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी चादरें महफूज हैं, जैनब अपना वादा वापस ले रही है, जिसके सहारे वादा किया था, मेरा अब्बास मारा गया, अलम आ गया, अलमदार ना आया, अलम आ गया, अलमदार ना आया, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास।